जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 43 पर 9 अप्रैल 2016 को इस्कॉन जुहू में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय कृष्णा, गला थोड़ा कमजोर है आज। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक 43। शब्द
ऋषियों ने कहा परम सर्वोच्च उपदेश दिया जो आत्मतेज आपकी आध्यात्मिक शक्ति जिससे या भौतिक जगत आदि पुरुष आदि परम पुरुषोत्तम भगवान आत्मतम आपके भीतर लीन सरकार आपने उत्पन्न किया तब की वह विधि विप्रलुप्तम चुराई गई अमुना उस दत्त हिरण्यकश्यपु द्वारा अब शरणागत के परम पालक रक्षा गृहित बपुषा आपके शरीर द्वारा जिसे आप रक्षा प्रदान करने के लिए धारण करते हैं पुनः फिर अनुमस्था आपने अनुमोदित किया है। सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वो आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं, यह तपस्या आपने सुप्त रख दी है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उसे तथा इस असुर को मारने से तपस्या का विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है।
सारे उपस्थित ऋषियों ने
उनकी इस प्रकार स्तुति की।
हे प्रभु,
हे शरणागत पालक,
हे आदि पुरुष,
आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उद्देश्य दिया है, वह आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भक्ति जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में शुद्ध रहती
है।
इस दैत्य ने अपने खास कलाकों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए जिस नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या का विधि का तीर से अनुमोदन हुआ है। सारे जीव 84 लाख जुनियों में भ्रमण करते हुए आप साक्षात्कार का अवसर मनुष्य रूप में प्राप्त करते हैं और तब धीरे धीरे देवता किन्नर तथा चारण के पद को प्राप्त होते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है, जैसा कि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, तपोदित्यम पुत्रकारे न सत्वम शुद्धे। अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए तपस्या परम आवश्यक है, किंतु जब सामान्य लोग असुर के अधीन हो जाते हैं या असुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को आगे भूल जाते हैं और क्रमशः वे भी असुरी बन जाते हैं। अतः सारे ऋषि जो सामान्यतया तपस्या में लगे थे नृसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की यह आत्मसाक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है। उन्हें पुष्टि की गई जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
ॐ ज्ञातिमनन्दस्य ज्ञानाञ्जनाय चक्षुर्मृतनेन श्रीचैतन्या मनोभिस्तां स्थापितामेन स्वयं रूपा कलामनं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाल शिवाय हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
श्री ऋषय ऊचु त्वं न तपापमं अत यद् आत्मतेजो येदमादि पुरुषं गतं स्वकथा तद्विप्रलुप्तम् अनुमाद्यासनपाशा रक्षागीतवपुषा पुनः अम्बा मम। तो ये श्लोक का उच्चारण ऋषि मुनि कर रहे हैं। आप इस अध्याय में पढ़ रहे हो कि किस प्रकार भगवान ने किसका वध किया, किस रूप में भगवान प्रकट हुए थे। इस अध्याय के आरंभ में आप पढ़ते हो कि प्रहलाद के जो अध्यापक थे संदरमण का, जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद का प्रभाव सारे साथियों पर आ गया है तो घबरा गए। घबरा कर प्रहलाद के पिता के पास पहुंचे। हम आपको कोई बुरी सूचना देना चाहते हैं। ने कहा क्या प्रहलाद का प्रभाव सारे साथियों पर पहुंच गया है, कोई भी हमारा कहना नहीं मान रहा, सब प्रहलाद के शिक्षा के आधार पर चल रहे हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद का इतना तेज प्रभाव हो गया है, उन्होंने क्या निर्णय किया, मुझे प्रहलाद का वध करना है किसी भी हालत में। और आप पढ़ते हो किस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहां से यह शक्ति आ रही है तुम्हें? प्रहलाद ने कहा कि यह शक्ति उसी स्थान से आ रही है जहां से तुम्हारी शक्ति आ रही है। जैसे सर्दी में आप हीटर चलाते हो, गर्मी में पंखा, दोनों का दोनों की ताकत तो एक ही स्थान से आती है, बिजली घर से। तो इसी प्रकार असुरों की शक्ति और सुरों की शक्ति दोनों ही परम भगवान से आ रही है। तो आप पढ़ते हो कि किस प्रकार नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु के वध करने के पश्चात सारे देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ऋषि मुनि सब वहां पहुंच गए परम भगवान का गुणगान करने के लिए। तो इन श्लोकों में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार अलग अलग देवताओं ने परम भगवान का गुणगान किया। हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव जी ने परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। उसके पश्चात इंद्र जी ने भगवान के अनेक गुणों का गुणगान किया। और आप कौन कर रहे हैं? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि भी वहाँ उपस्थित है। तो इस श्लोक और तात्पर्य में हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए भागवतम के हर श्लोक में महत्वपूर्ण संदेश है। भागवतम का हर श्लोक चीनी जैसा मीठा है। तो यहाँ क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले तो जो ऋषि मुनि हैं वो परम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हो सर्वपालक, आप ही हो परम भगवान। खास करके उनके जो कि आपके शरणागत होते हैं, भक्तों का ये भाव रहता है कि परम भगवान ही है हमारे सुरक्षक। और भगवान गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम सारे विश्व को सूचना दो। क्या सूचना? कौन थे पति जाने ही हमें भक्त पुनः, मेरा भक्त जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। यहाँ ऋषि मुनि ये स्वीकार कर रहे हैं यू आर द सुप्रीम मेंटेनर, आप सर्वपालक हो, आप सबकी देखभाल कर रहे हो। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उन्हें अनेक नाम दिए गए थे, अनेक नामों में एक नाम था विश्वंबर, जो कि पूरे पृथ्वी को संभालते हैं। तो परम भगवान जो है अपने भक्तों के रक्षक है। और यहाँ आप देखते हो इस अध्याय में, इस कथा में, जब हिरण्यकश्यपु ने निर्णय किया कि अब हमें प्रहलाद का वध कर देना चाहिए, तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा कैसे की? नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट होकर। तो भगवान बार बार कहते हैं कि मेरे भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ। भौतिक समाज में हम सोचते हैं ये व्यक्ति हमारी सुरक्षा करेगा, ये हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा धन हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे बीवी बच्चे सुरक्षा करेंगे। ये कर सकते हैं किसी? हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की कहाँ से करेंगे? अगर कोई हमारी सुरक्षा कर सकता है वो केवल परम भगवान है। तो ये इस विषय की स्थापना की गई है ऋषि मुनि के द्वारा। आगे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि तपस्या तपस्या के द्वारा पेनेंस तपस्या के द्वारा आपको हम जान सकते हैं। इस तात्पर्य में और अनुवाद में एक विषय पर बल दिया गया है, वो विषय क्या है? तपस्या। तपस्या के बिना आप परम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद में कहते हैं, तस्म तपस्व परम ज्योतिर् भागवतम अधोक्षजम। परम भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है अधोक्षजा। तो परम भगवान है अधोक्षजा, उनको समझना, पहचानना, उनके गुणों को समझना सरल कार्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस्या परम ज्योति, तपस्या के माध्यम से आप भगवान को जान सकते हो। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है ऋषि मुनियों के द्वारा कि तपस्या के माध्यम से आप भगवान को जान सकते हो, और तपस्या के माध्यम से ही आपको आध्यात्मिक गुण प्राप्त हो सकता है। तपस्या के ऊपर बल बार बार दिया जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवतम के पांचवें स्कंद का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग कर रहे हैं। कौन सा है वो श्लोक? तपो दिव्यम पुस्तका ये आयम देह देहा बाजम लोके कस्तम कामा मदभित भुजम है। तपो दिव्यम पुस्तका ये न सत्वम श्री ये रस्मात परमें सौख्य मनंतम। भगवान ऋषभदेव भी भगवान के अवतार हैं। ऋषभ शब्द का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, और भगवान ऋषभदेव महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। महाराज नाभि और मेरु देवी तपस्या कर रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें भगवान प्राप्त हों पुत्र के रूप में। भगवान के उद्देश्य उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये तो असंभव है, भगवान जैसा कोई हो सकता है? मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। और भगवान पुत्र बन गए। और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, भगवान के लिए क्या असंभव है? पूरी प्रजा उनके पुत्र है। और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, क्या कहा? नायम देह देह बाजम लोके, हे मेरे प्रिय पुत्र, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का पशुओं के समान उपयोग मत करो। क्या करो? तपो देवियम पुत्र का ये न सत्वम, ये जीवन का उपयोग करो तपस्या का पालन करने के लिए। पर तपस्या किसके लिए? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वो तपस्या जो हम करते हैं भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, वो तपस्या है राजस और अज्ञान भाव में। तो ऋषभदेव जी कहते हैं, तपस्या करो पर किसके लिए? तपस्या करो तपो दिव्यम, दिव्य मतलब भगवान की खुशी के लिए। तपस्या करो भगवान की खुशी के लिए। दूसरे शब्दों में, तपस्या करो शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार। तो आप आगे पूछ सकते हो, अगर हम तपस्या करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ मिलता है? क्या मिलता है? सुधीर स्मार ब्रह्म सौख्य मनंतम, असली आनंद जो कि केवल बढ़ते ही जाता है। कभी घटता नहीं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाशक के प्रथम श्लोक में क्या कहा है, चेतन दर्पण महाजनम, हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ है हृदय साफ होता है। आगे आनंद बुद्धि वर्धनम, भगवान के नाम जितने गहराई के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ भगवान का नाम लोगे, उतनी मात्रा में आनंद भी बढ़ते जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम तपस्या करेंगे इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, नहीं, इसके बदले में आपको असली लाभ मिलेगा। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान अनेक श्लोकों के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं, ध्येय की क्या तपस्या है, वाणी की क्या तपस्या है और मन की क्या तपस्या है। ये तीन साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो और जिनके द्वारा आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। इंद्रिय तृप्ति भी करना हो तो क्या है साधन, ध्येय, वाणी और मन। भगवान की सेवा करना है तो ये तीन माध्यम है। तो गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं ध्येय द्वारा परमेश्वर की सेवा करो। भगवान ने यह ध्येय दिया है, इसका उपयोग करो, किस लिए, परमेश्वर की सेवा में। श्रीमद् भागवत में आप अमरीश महाराज की कथा पढ़ते हो। अमरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, राजा होते हुए भी ऊंचे कोटि के भक्त थे। सदा निरंतर उनके मन में केवल एक ही भाव था, भगवान का स्मरण। तो अमरीश महाराज ने हमें उदाहरण दिया है ध्येय का उपयोग कैसे करना चाहिए भगवान की सेवा में। अमरीश महाराज ने उदाहरण के लिए अपने नेत्रों का उपयोग किया भगवान के सुंदर विग्रह को देखने के लिए, अपने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर में चल के जाने के लिए, अपने हाथों का उपयोग किया किस लिए, भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। भगवान के मंदिर को साफ करना बहुत ऊंची सेवा है। आप चैतन्य चैतन्यमृत में पढ़ते हो कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ गुंडीचा मार्जनम कर रहे थे, पूरे मंदिर को, छत को, पृथ्वी को, दीवारों को खुद रगड़ रहे थे और दूसरों को सिखाते थे कैसे रगड़ने के लिए। और अगर कोई ज्यादा मैल इकट्ठा कर रहा था तो उसे फिर शिक्षा देते थे, उसे सिखाओ क्योंकि कम मैल इकट्ठा कर रहा है। तो चोर सारे भक्त सेवा में लगे थे, साथ साथ हरि नाम का महामंत्र का उच्चारण, कोई को चर्चा नहीं कर रहा था, सब हाथों से इशारा करते थे हरि नाम का जाप और सेवा। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। और अमरीश महाराज ने उदाहरण दिया कैसे हाथों का उपयोग करना चाहिए भगवान की मंदिर को साफ करने के लिए। कई बार हम भक्ति में आते हैं और जब आपको कोई तुच्छ सेवा दी जाती है तो हम सोचते हैं हम यहां भंगी बनने थोड़ी आए। हाँ, चैतन्य चतुर्थी में कथा पढ़ते हो, एक से एक राजा था पुरुषोत्तम, उसका विवाह होने वाला था पद्मावती के साथ। तो विवाह से पहले राजा ने, पद्मावती के पिता ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा, लेकर आओ पुरुषोत्तम का राज्य कैसा है। महाराज पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के बड़े प्रसिद्ध भक्त है, तो हर साल रथ यात्रा से पहले वो पूरे रास्ते को खुद झाड़ू देकर साफ करते थे और फिर गुलाब के पानी से उसे धोते थे। तो ये मूर्ख प्रधानमंत्री ने जब देखा कि राजा पुरुषोत्तम राजा पुरुषोत्तम झाड़ू दे रहा है और साफ कर रहा है, तो इसने राज पद्मावती के पिता को जाकर कह दिया, ये राजा तो भंगी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो झाड़ू दे रहा था और सड़क को धो रहा था। तो भगवान के लिए भंगी बनना, अच्छा जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू दे रहे हैं, रास्ते को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जिस रास्ते पर रथ निकलने वाला था, बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें खास दिव्य दर्शन दिया। महाप्रभु अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे। हर रथ के साथ 8 कीर्तन की मंडलियां होती थी, महाप्रभु ने अपना विस्तार करके 8 कीर्तन मंडलियों में बसे थे। तो ये खास दर्शन केवल प्रिय भक्तों को मिला, जिनमें से एक थे महाराज प्रताप पुत्र। और महाराज प्रताप पुत्र को क्यों ये दर्शन दिया, क्योंकि महाप्रभु प्रसन्न हुए कि वो भंगी का काम कर रहे थे भगवान के लिए। तो अम्बरीश महाराज हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे। तो अगर आपको ऐसी सेवा दी जाए, झाड़ू मारो मंदिर में, खोडियत में, हरे कृष्णा लैन में, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो भंगी की सेवा मिल गई। भगवान के लिए तुच्छ सेवा करना भी बड़ा महत्व रखता है। इधर राइट ब्राजारे हम सबको तुच्छ सेवा के लिए लड़ना चाहिए। कई बार मैं ये देखता हूँ सिखों में, सिखों के गुरुद्वारे में लोगों को सालों साल पहले नाम लिखाना पड़ता है तुच्छ सेवा के लिए। और सबसे तुच्छ सेवा उनमें क्या मानी जाती है, जूते रखना, शू स्टैंड को संभालना और जूते को पॉलिश करना। तो जो भी गुरुद्वारे में जाता है उसके जूतों को पॉलिश करते हैं और शू स्टैंड में रखते हैं। और ये सेवा करोड़पति सिख लोग भी करते हैं। तो ये भाव अच्छा है, और भाव ये है कि भगवान की सेवा जब आप करो तो तुच्छ सेवा होनी चाहिए, तुच्छ सेवा करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने अपने हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, अपने नेत्रों का उपयोग किया भगवान के विग्रह का दर्शन लेने के लिए। इस प्रकार उन्होंने शरीर को उपयोग किया भगवान की सेवा में। तो भगवद गीता में कहा गया है कि शरीर की पहली तपस्या है क्या, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो। आगे भगवद गीता में कहा गया है शरीर की एक और तपस्या है ब्राह्मणों की सेवा करो, केवल भगवान की नहीं तो भगवान के भक्तों की भी, ब्राह्मणों की भी सेवा करो। कई बार हमारे मन में भाव आता है हम भगवान की सेवा तो करेंगे और किसी की नहीं। कई बार लोग आएंगे दर्शन के लिए पर कभी क्लास में नहीं बैठेंगे, दर्शन लेंगे भगवान का पर सुनेंगे नहीं उनके भक्तों के द्वारा क्या उपदेश दिया जा रहा है। तो भगवान गीता में कहते हैं श्री द्वारा एक तपस्या है भगवान की सेवा करो, श्री द्वारा एक और उदाहरण है तपस्या का ब्राह्मणों की सेवा करो। तो जब ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया है इसका अर्थ है शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करो। दूसरे शब्द में श्री के द्वारा भक्तों की सेवा करो, हमारा भाव क्या है कि हम दास 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 हैं, भक्तों के भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक, ये भाव होना चाहिए हमारे में। आगे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ध्येय द्वारा गुरु की सेवा करो। भगवत भक्ति रसमृत सिंधु में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आध्यात्मिक शरण लो प्रमाणिक गुरु की, सेवा करो, दीक्षा ग्रहण करो, फिर पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपको बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए, डॉक्टर से दवाई लेते हो और आप पूछते नहीं हो डॉक्टर क्या खुराक खानी चाहिए मुझे, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा केवल दीक्षा ग्रहण नहीं करो, तो ये पूछो कि हमें क्या त्यागना चाहिए भक्ति में उन्नति करने के लिए, और अगर कुछ त्यागना क्या पड़े तो उसे त्यागो, इच्छको मत। तो शरीर के द्वारा गीता में कहा गया है गुरु की सेवा करो। आगे शरीर के द्वारा क्या, स्वच्छता का पालन करो, पवित्रता का पालन करो। शरीर द्वारा हमें पवित्रता का पालन करना है, अंदर की तो पवित्रता बाहर की पवित्रता। हमें रहना चाहिए बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में। जब प्रभुपाद जी किसी मंदिर में पहुंचते थे सबसे पहले देखते थे भगवान के दर्शन के बाद मंदिर में कितनी सफाई है, और अगर किसी कोने में थोड़ा भी गंदा गंद दिखे तो प्रभुपाद जी खुश नहीं होते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मंदिर में बिल्कुल स्वच्छता होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने ये आंदोलन निकाला है स्वच्छ भारत, है ना। तो हम लोगों को कहते हैं हमारा आंदोलन है स्वच्छ हृदय, हृदय को स्वच्छ बनाना है। तो बाहर की सफाई आप रख लोगे, हृदय की सफाई नहीं करोगे तो शोभा रहेगी नहीं। हमें बाहर की सफाई रखनी है, स्वच्छता बाहर में और स्वच्छता हृदय में, वो संभव है नाम के द्वारा। तो आगे शरीर की एक और तपस्या है सरलता, सिंप्लिसिटी। हमारा आध्यात्मिक नियम है सादा जीवन ऊंचा विचार, सादे रूप से रहो। सादे रूप से रहोगे तो बिना चिंता के सरलता के साथ आप रह सकोगे। अगर आपको एक तरफ से आध्यात्मिक जीवन चाहिए और दूसरी तरफ से भौतिक सुविधाएं तो आप भक्ति के मार्ग में उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं शरीर की एक तपस्या है सरलता, सरलता करता है सिंप्लिसिटी। फिर आगे क्या ब्रह्मचार्य, ये भी शरीर की एक तपस्या है। अगर आप ब्रह्मचार्य रह सकते हो तो ये सबसे उत्तम तरीका है भगवान की सेवा करने के लिए, और ब्रह्मचारी जीवन के जीवों का ज्ञान भगवतम में प्राप्त होता है। और अहिंसा, जो भक्ति के मार्ग में हैं उनका नियम है अहिंसा। आपको शायद पता हो आज के वातावरण में भारत में भी कई बुद्धिस्ट बन रहे हैं, विदेशों में ये एक फैशन बन गया है बुद्धिस्ट बनने का। कोई मुझे कह रहा था दिल्ली में कि भारत में भी कई रईस लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, ये जी टी वी का मालिक है वो बुद्धिस्ट बन गया है और जी टी वी द्वारा काफ़ी प्रोपेगेंडा जाता है बुद्धिस्ट बनने का। तो ये जो बुद्धिस्ट और कई बुद्धिस्ट देश हैं एशिया में, पर बुद्धा जी का सिद्धांत था अहिंसा, पर जो आज के बुद्धिस्ट हैं वो हर चीज खाते हैं, तो फिर क्या फायदा। तो भक्त का भाव होना चाहिए, भक्त का की तपस्या शरीर की एक तपस्या है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है चींटी को भी कष्ट नहीं देना। अब भागवत में जद भारत की कथा पढ़ते हो, मां रोगिणा की पलकी को उठा रहे थे और वो इतनी सावधानी से चल रहे थे कि किसी चींटी पर भी पाँव नहीं आ जाए। आगे तीन कदम तक देखते थे कोई जीवात्मा पर पाँव न नहीं आ रहा। तो ये है शरीर की तपस्या। शरीर की एक और तपस्या है कि शरीर द्वारा अहिंसा का पालन करना, किसी को कष्ट नहीं देना। ये तो संक्षेप में रहा ध्येय की तपस्या। आगे भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, ट्रूथफुलनेस। जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, ये नहीं कि जीव द्वारा झूठ बोलते रहो। और आगे सत्य का उच्चारण करो और मिठास के साथ इसका वर्णन करो। ऐसे शब्दों का उच्चारण करो जिसके द्वारा सबको लाभ पहुंचे। यह है गीता का उपदेश, यह है जीव की तपस्या। जीव को आदत है प्रज्वलपक करने की। सच बात, रूप गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रज्वलपक से बचो। अत्यारा प्रायश प्रज्वलपन यह माग्रह जनसंघर्ष लोलियम चीर भक्ति विनश्यति। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति नष्ट कैसे हो सकती है, एक साधन है प्रज्वलपक का। तो इसलिए क्योंकि हमें प्रज्वलपक की आदत है बचपन से, बचपन से हमें आदत है भौतिक चर्चा की, तो इसलिए भगवान कहते हैं जीव की एक तपस्या यह है कि आप सत्य का उच्चारण करो, सत्य की चर्चा करो मधुरता के साथ, आगे उन शब्दों का उपयोग करो जिनके द्वारा सबको लाभ उठाओ, सब लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए जब आप जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करते हो तो चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, जो भी नामों को सुनेंगे या सुनेगा उसको इसका लाभ पहुंचेगा। इसलिए जीव की एक और तपस्या क्या है, सदा भगवान के नामों का उच्चारण करना। भगवान के नामों के विषय में कहा गया है कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो और थकोगे नहीं। आप हरिदास ठाकुर की कथा पढ़ते हो कि किस प्रकार सुबह से रात तक वो हरि नाम का उच्चारण करते थे और कभी थके नहीं। इसलिए जीव की तपस्या के विषय में कहा गया है कि सत्य का उच्चारण करो बड़े गंभीरता के साथ, ऐसे शब्दों का उच्चारण करो जिसे सबका लाभ पहुंचे, और वैदिक शास्त्रों का उच्चारण करो। तो जीव द्वारा हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों प्रकट हुए, असुरों का वध करने के लिए। असुरों का वध भगवान सरलता से कर सकते हैं, उनके एक रूप से प्रकट होने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान प्रकट होते हैं कृष्णा कथा को जन्म देने के लिए। और हम भक्तों का भाव क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा में हम रुचि लें, हरिनाम में रुचि लें और कृष्ण कथा में। कृष्ण कथा करते हैं सदा कृष्ण संबंधित कथा की चर्चा करना और गीता का की चर्चा करना। हमारे कई भक्त हैं सारे विश्व में जो रोज भगवद गीता का एक श्लोक लिखते हैं कार्ड में और सारा दिन वो कार्ड अपने सामने रखते रहते हैं। इस प्रकार सेवा भी करते हैं और श्लोकों का भी कंटेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार आप प्रजल्प से भी बचोगे। साथ में कोई भक्त हैं जो ये करते हैं रोज रोज एक श्लोक ले लो गीता का और एक कार्ड में लिखो इंडेक्स कार्ड में और सारा दिन जब भी आपको मौका मिले वो श्लोक का उच्चारण करो। एक दिन दो या तीन दिन में अब एक श्लोक याद कर लोगे, हंसते हंसते पूरी गीता याद हो जाएगी और आप बचोगे प्रजल्प से। तो भगवान कहते हैं जीव की तपस्या है कि आप सदा भगवान के नामों का उच्चारण करो। आगे भगवान कहते हैं मन की तपस्या। मन की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं सदा संतुष्ट रहो। देखा जाए बौद्धिक समाज में कोई संतोष नहीं है। कोई है? आप सोचोगे टाटा बिरला अंबानी संतुष्ट है, कोई संतोष नहीं है। बौद्धिक समाज में सब लालची हैं, सबको और चाहिए। भागवतम के आठवें स्कंद में आप पढ़ते हो जब बाली महाराज ने वामन देव से कहा जो मांगना है मांग लो मेरे से, और वामन देव ने क्या मांगा, उतना स्थान जहां तीन कदम रख सको। बाली महाराज ने कहा इतनी छोटी भेंट मांग रहे हो, मुझे लगता है आप बच्चे हो, मैं तो तुम्हें पूरी पृथ्वी दे सकता हूं, और मांगो मेरे से, इतना थोड़ा स्थान मांगने का क्या फायदा। तो वामन देव ने कहा भूखा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है भोजन खा के, प्यासा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है जल पीकर, क्रोधित व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है चिल्लाकर, पर लालची व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है कभी नहीं। तो बौद्धिक समाज में हर व्यक्ति लालची है, वो इस कारण वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। जितना प्राप्त हो उसको लगता है इसका दुगना आना चाहिए। जितने बड़े बड़े कारखाने आप देखोगे या टाटा का या बिरला का या अंबानी का या किसका है, सबको लगती है हमें और धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है, संतुष्ट रहो सुख में दुख में संतुष्ट रहो। ये नहीं कि कष्ट की स्थिति में है तो संतुष्ट नहीं रहो। भगवतम में भगवान कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न सर्वेन्द्रिय पर शांति अच्छा तुषाद यशु जनार्दना। अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक आवश्यकता है हर स्थिति में तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर सरलता, इस विषय की चर्चा हम कर चुके हैं, सरल जीवन सादा विचार। गंभीरता, भगवान के जो भक्त हैं उन्हें गंभीर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम हंसी मजाक करते रहें, हमें हमेशा गंभीर रहना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए एक पल का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकोगे। तो इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कोई दुर्घटना आ जाए एक्सीडेंट आ जाए, हम सब कोई दुर्घटना भी जाए गंभीर हो जाते हैं। किसकी खानदान में मृत्यु होती है तो हम गंभीर हो जाते हैं, पर एक दिन के बाद वो गंभीरता दूर हो जाती है। हमें हमेशा गंभीर रहना चाहिए। और आत्मा स्वयं, आत्मा स्वयं का मतलब है मन और इंद्रियों को वश में रखना। तो इस प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं जीव की तपस्या, ध्येय की तपस्या और मन की तपस्या। तो आज के श्लोक में ऋषि मुनि कह रहे हैं हे भगवान, आप अपने भक्तों के सुरक्षक हो, आप भक्तों की सुरक्षा करते हो, आप सबकी देखभाल करते हो। और आपको जानना हो तो एक ही माध्यम है, वो है क्या? तपस्या। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है जब नेता असुरिक भावक के हो तो समाज में तपस्या भी नहीं होती। जैसे आज के वातावरण में हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, बहुत कम में आध्यात्मिक रुचि है, बहुत कम ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता। इस कारण तपस्या कहाँ है समाज में? अनेक धर्म के प्रचारक है, पर आप देखोगे अपने उपदेश में कभी भी वो तपस्या की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? और करेंगे भी नाम के लिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, उन्होंने वहां के वातावरण को देखा, प्रभुपाद जी को लगा कौन सुनेगा इस संदेश को। आगे उन्होंने भाव प्रकट किया कि राधा रानी जी की कृपा से हर कार्य संभव है। जब प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार शुरू किया न्यूयॉर्क शहर में, तो अनेक संतों ने, जो नाम के संत स्वामी जो भारत से गए थे धन कमाने के लिए, उन्होंने कहा स्वामी जी से, स्वामी जी आप तो नए आए हो अमेरिका में, आप अगर ये चार नियमों का उपदेश दोगे कोई नहीं सुनेगा आपको, आप ही हमारे जैसे सूट पहनना शुरू कर दो और विदेशी रिवाज को अपनाओ। और प्रभुपाद जी ने बिल्कुल बदला नहीं। हालांकि संसद की स्थापना के पश्चात भी प्रभुपाद जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने सिद्धांत नहीं बदला। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर हम शुद्ध भाव से इस शिक्षा का प्रचार करेंगे श्रद्धालु व्यक्ति प्रकट होंगे। तो जब हमारे नेता और राजा असुरिक भाव के हों तो तपस्या का प्रचार भी बंद हो जाता है, पालन भी बंद हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप के समय उनके असुरिक भाव के कारण समाज में सब तपस्या समाप्त हो गई थी। और जो देवता थे बड़े प्रसन्न हुए कि हिरण्यकश्यप का वध हो गया, क्योंकि देवता चाहते थे क्या कि फिर से अब उत्साह के साथ हम तपस्या का पालन कर सकेंगे। तो एक प्रश्न रह गया है, कई बार लोग पूछते हैं तपस्या के पालन की शक्ति कहां से आती है। कई बार लोग पूछते हैं आप तो भारत में जन्म लिया है पर विदेशों में भी तुम लोग इन नियमों का पालन कर रहे हो, चाय नहीं, कॉफी नहीं, ये नहीं, सुबह 3:30 बजे जागना, तो ये सब शक्ति कहां से आती है? शक्ति कहां से आती है जिसके माध्यम से आप तपस्या का पालन कर सको? कहां से आती है महाराज? शक्ति आती है वैदिक भक्ति का पालन करके। अगर वैदिक भक्ति का पालन करोगे, नियमों का पालन करोगे, उदाहरण के लिए अच्छी साधना रखोगे, ध्यान पूर्वक जाप करोगे, बकायदा शास्त्रों को पढ़ोगे, तो आपको शक्ति आएगी। जैसे कि अगर आप अच्छी खुराक खाओ तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ ठीक है ना, आप सब चाहते हो अच्छा प्रसाद मिले, आपको ज्यादा वा प्रसाद दें तो आप स्ट्राइक में चले जाते हो। तो अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो फिर आपको शक्ति आएगी तपस्या का पालन करने में, चाहे आप किसी आश्रम में भी हो। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में तपस्या का पालन नहीं। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, हमें तपस्या का पालन करना पड़ेगा। और ये है कीमत। और जैसे भगवान ऋषभदेव कह चुके हैं, अगर हम तपस्या का पालन करेंगे तो इसके बदले में क्या मिलेगा? आनंद, असली आनंद, नकली। बहुत एक समाज में जो आनंद मिल रहा है यह है नकली आनंद। और अगर आपको असली आनंद चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? इस कौन संस्था में आपको यहाँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो शिक्षा मिलेगी, असली आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें जाप करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सदा साधु संग में रहना चाहिए। और इस वातावरण में तपस्या का पालन होना ज़्यादा सरल हो जाएगा। शास्त्र में तपस्या शब्द का उपयोग बार बार किया गया है, क्योंकि तपस्या का बिना आध्यात्मिक परिवर्तन असंभव है। इसलिए अगर हमें तपस्या करना पड़े तो हमें अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि तपस्या एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो, और कोई साधन नहीं है। तो सब तैयार हो तपस्या के लिए? पक्का? हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हाँ पूछिए, काफी देर हो गई है तो एक दो प्रश्न लेंगे।
आपने जब बुद्धिस्ट की बनने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं इसका चर्चा किया, बुद्धिस्ट बनने के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं इसका चर्चा किया आपने, तो भगवान बुद्ध माना कि आपका हिसाब से भगवान के अवतार माने जाते हैं, बहुत सारे अवतार भगवान के हुए हैं और सब अवतार यहाँ उनके लिए लाए हिंदू सनातन धर्म को स्थापित करने और मजबूति प्रदान करने के लिए हुई, लेकिन बुद्ध के अवतार में भगवान ने हिंदू मान्यताओं और उनके शास्त्रों का सीधा सीधा विरोध किया है, तो भगवान स्वयं ऐसा क्यों किया इस अवतार में अपने ही मान्यताओं के विरुद्ध क्यों प्रचार किए, और इतना अच्छा प्रचार किए कि कई देशों ने बुद्ध धर्म को अपना लिया।
माफ करना, यार इतना सुना ही नहीं देता यहाँ। संक्षेप में क्या है आपका प्रश्न?
संक्षेप में भगवान बुद्ध के अवतार में भगवान ने अपने ही शास्त्रों मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार किया, और इतना अच्छा प्रचार किया कि कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
क्योंकि उन दिनों में लोग धर्म के नाम पर पशुओं पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए इस अत्याचार को रोकने के लिए बुद्धा जी ने ऐसा प्रचार किया।
इसे यही मैसेज तो आता है महाराज की, भगवान स्वयं भी चाहते हैं कि समाज में बंटवारा बना रहे।
बंटवारा नहीं, आप कहोगे क्या कारण है ये अलग अलग धर्म अलग अलग शिक्षा है? कारण ये है कि हम चुन सकते हैं कितनी मात्रा में हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। अगर आप पूरे रूप से भगवान के शरणागत होना चाहते हो फिर सर्वधर्म परित्यज्य महामेकं शरणं व्रज, इसका पालन करो और इस संस्था में जुड़ो। और अगर आप 1% समर्पण होना चाहते हो, 2% तो अलग अलग मार्ग हैं। जैसे कि 2 और 2 4 होता है, तो जब भी हायर मैथमेटिक्स है लोअर मैथमेटिक्स है, तो इसी प्रकार अलग अलग शास्त्र में अलग अलग मात्रा में भगवान का उपदेश प्राप्त होता है। पर जो भाग्यवान है वो संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं। ओके एनी मोर? यस। You can ask questions in English also.
You very nicely explained how devotees should be there.
Gravity is one of the means of austerity on the mind.
So, we read in Shachi Sutta Ashutam that Nava Hasya Karam, Nava Hemavaram, Nava Hasya Karam. Mahaprabhu used to joke. So, how do we understand this?
Mahaprabhu can joke. Lord Shiva can have an ocean of poison holding in his neck. We have to be more careful. Mahaprabhu was very mischievous when he was young. But we should not imitate that. But we should just meditate on his pastime. Of course, this doesn't mean that the devotee doesn't smile or he doesn't laugh. Or like Prabhupada was always smiling and happy. The devotee is happy and smiling, but he doesn't become frivolous. He should not become frivolous in dealing with each other. Sometimes you have some devotees, they're always joking. That's not good also. A devotee should be serious. Serious about the goal of life. End can come at any moment, so I should be careful, fully prepared. That's a safer approach. Okay? Any more questions? Yes? हमारे संस्थापक आचार्य ने ये उदाहरण दिया है. श्री प्रभुपाद जी जहाँ राधा माधव को गाते थे लेक्चर से पहले, इसलिए हम लोग भी परंपरा के अनुसार उनकी उदाहरण के आधार पर कार्य करते हैं. प्रभुपाद जी भी यही गाते थे. ओके, हरे कृष्णा.
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.